नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला जारी, कोलकाता ने पहली जीत दर्ज की। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में 8 विकेट से हराया। एथलेटिक्स सीजन 2026 में सेल्वा प्रभु ने पुरुषों का ट्रिपल जंप खिताब जीता और सूरज कुमार चंद ने HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर के फाइनल में जगह बनाई। चर्चा की शुरुआत करते हैं आईपीएल से। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 13वें ओवर में एक विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंक तालिका में पंजाब पहले और लखनऊ 8वें स्थान पर है। बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे पंजाब के बल्लेबाज, चाहे हम प्रियांश की बात कर ले या कूपर कॉलोनी की बात कर ले, 80 रन प्रियांश ने बनाए और 81 बनाकर कूपर खेल रहे।
देखिए, जैसे पिछली बार प्रियांश आर्य ने सेंचुरी बनाई थी, अब तो हमें बहुत उम्मीदें जग गई हैं कि उनकी तरफ से सेंचुरी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पारी को जमाया, सवारा, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दोनों कोई रिले रेस होती है ना, जैसे बैटन आप पकड़ा देते हैं दूसरे को कि भैया आप छक्का लगाने की बारी तुम्हारी है, तो इधर से कूपर दो छक्के लगाते हैं, उसके बाद बारी आती है प्रियांश आर्य की तो ये दो छक्के लगाते हैं। तो कुछ ऐसा सिलसिला बना कि मोहम्मद शमी हो, चाहे उनके सामने आयुष बदौनी हो, मोहसिन खान हो, प्रिंस हो, सबके साथ जो है ना बहुत बौने नजर आने लगे। हालांकि शमी ने वॉवल सीम पर जो एक विकेट लिया था प्रभसिमरन का, प्रभसिमरन का मैं इसलिए बड़ा विकेट मानता हूं क्योंकि प्रभसिमरन आज के आधुनिक क्रिकेट में कुछ चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक हैं जो गैप का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बहुत हाई रिस्क शॉट नहीं खेलते जिस तरह से आप वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं या फिर जैसे आप अभिषेक शर्मा को देखते हैं। इनका गेम बिल्कुल अलग है। तो उनका महत्वपूर्ण विकेट जरूर चटकाया लेकिन उसके बाद इन दोनों ने कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया, लेकिन टावरिंग शॉट लगाने में पीछे भी नहीं हटे।
जी, प्रभ सिमरन सिंह की जो बल्लेबाजी है उसकी तारीफ युवराज सिंह भी किया करते हैं कि जिस तरीके से उनके अभिषेक शर्मा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया भारत के लिए, वो कहते हैं कि आगे के टाइम पर वो भी ऐसा खेलते नजर आएंगे। वहीं जैसे आपने प्रियांश आर्या की बात की, वैभव सूर्यवंशी की बात की, इंडियन टीम में इनकी जगह अब तक हो बन नहीं पाई। अभी वैभव सूर्यवंशी का खूब नाम लिया जा रहा है कि अगले टूर में उन्हें टीम में शामिल किया जाए, लेकिन उनके ही साथी यशस्वी जायसवाल है जो बेहतरीन बल्लेबाज है और भारत को रिप्रेजेंट भी करते आए बहुत टाइम से, उनकी जगह भी नहीं बन रही है टीम में।
देखिए जी, मेन स्ट्रीम में कौन रहता है, कौन कोच की पसंद रहता है और मौजूदा स्थिति क्या होती है, कुछ नहीं पता चलता। आप देखिए, ईशान किशन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो T20 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता पिछला, उसमें वो भारतीय टीम के सदस्य बन गए, जबकि 6 महीने पहले तक उनका नाम ही नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, उसका उन्हें पारितोषिक मिला भारतीय टीम में जगह पाकर। तो कुछ नहीं पता चलता। ये मत सोचें कि प्रियांश आर्य अभी बिल्कुल बच्चे हैं, कब किनको कब मौका मिल जाए, कौन प्लेयर कब इंजर्ड हो जाए, कौन आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। जैसे अभिषेक शर्मा को देखा आपने पिछले वर्ल्ड कप में T20 में, वो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे उस तरह से जिस तरह से उनसे उम्मीदें थी। दुनिया के नंबर एक क्रिकेटर के तौर पर वो जाने जाते थे लेकिन उसके बावजूद उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला। चला तो एक दो पारियों में जरूर, उन्होंने कुछ एक रन जरूर बनाए, लेकिन अभिषेक से बहुत बड़ी पारियों की हम उम्मीद कर रहे थे, जो इस बार भी अगर आप देखें तो हर दूसरे मैच में चल रहे हैं, लगातार इस बार भी नहीं चल पा रहे हैं।
जी, वहीं आज हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के 156 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 2 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की शुरुआत शानदार रही। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की। वैभव ने 46 रन की पारी खेली, वहीं उनके जोड़ीदार यशस्वी जायसवाल ने 39 रन बनाए। अच्छी शुरुआत को राजस्थान बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकी और महज 117 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। राजस्थान के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में सिर्फ 155 रन ही बना सकी। कार्तिक त्यागी और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। टिम साइफर्ट और कप्तान अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। रघुवंशी भी सिर्फ 10 रन ही बना सके और कोलकाता ने 52 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। कैमरन ग्रीन ने 27 और रेवन पॉवेल ने 23 रन बनाए। कोलकाता ने अपने 6 विकेट 85 रन पर ही गंवा दिए। कोलकाता की डूबती नैया को रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने संभाला। अनुकूल रॉय ने ताबड़तोड़ 29 रन की पारी खेली। वहीं रिंकू के नाबाद 53 रन की पारी की बदौलत कोलकाता ने प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
फाइनली पहली जीत कोलकाता को मिली है इस प्रतियोगिता में, लेकिन जिस प्रकार से रिंकू सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया, अगर उनका कैच अगर पकड़ लेते नांद्रे बर्गर तो शायद आज भी जो रिजल्ट है उनके पक्ष में नहीं होता।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहां राजस्थान रॉयल्स बेशक 10-15 रन उसने कम बनाए जितना की अपेक्षित था, जितनी उम्मीद थी उससे, लेकिन ये जो कैच छूटा है, ये कैच नहीं छूटा, मैच छूट गया उनके हाथ से, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जडेजा की बॉल पर जो बर्गर ने, जैसा कि आपने बताया, ये कैच छूटा है। लेकिन साथ ही मैं कहूंगा राजस्थान रॉयल्स का कोलैप्स हुआ है, ये भी हमें मानना होगा। और साथ ही अगर आप देखें तो रिंकू सिंह का चलना, वरुण चक्रवर्ती का चलना, जो T20 वर्ल्ड कप के सितारे थे, हमारी टीम के सदस्य थे, वो चल नहीं पा रहे थे। ये क्या, बाकी आप और भी प्लेयर्स देखेंगे, आप T20 वर्ल्ड कप के खिलाड़ी उतने ज्यादा अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रिंकू सिंह ने मैच जिताया और एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली उन्होंने। पहले हमने नीतीश रेड्डी, जो कि ठीक है T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन उनको भी पिछले दिनों हमने देखा कि मैच जिताते हुए देखा, स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा, पारी की शुरुआत गेंदबाजी में करते हुए उनको देखा, तो ये एक अच्छा साइन है। और खासकर वरुण चक्रवर्ती, जो पहले 2 मैचों में जिनका फ्लॉप शो चल रहा था, वो अचानक चले, और वो भी पिछले 2 मैचों में जिस तरह से 5 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, और जो उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट को समझ नहीं पा रहे थे, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे ध्रुव जुरेल हो, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो, तो मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा साइन है। और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने, दोनों ने मिलकर जो है मैं कहूंगा कि जिस तरह से 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए हैं दोनों ने केवल 8 ओवर में, यही मैच का एक टर्निंग पॉइंट था।
जी, वहीं कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। और कल एक और मुकाबला खेला गया जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया। एक ऐसा समय भी था जब चेन्नई को एक ओवर में 16 रन की दरकार थी, तो सबको ये उम्मीद थी कि अगर इस जगह पर महेंद्र सिंह धोनी होते उनके लिए टेलर मेड सिचुएशन था, तो क्या वो स्कोर को कर पाते।
मुझे लगता है जो 11वां ओवर और 12वां ओवर जो था पारी का, जिसमें रन बिल्कुल बनने अकाल आ गया था, रनों का अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। अब देखिए, हमेशा अब महेंद्र सिंह धोनी तो आपके साथ रहेंगे नहीं, जब धोनी थे तब भी ऐसी स्थिति आती थी, लेकिन वो बाद में उबार देते थे अपनी टीम को, संकट से उबार देते थे, बाकी खिलाड़ियों पर उसका बड़ा पॉजिटिव असर होता था, लेकिन यहां पर वो असर देखने को नहीं मिला। और इसी वजह से अगर आप देखें तो मैं कहूंगा कि खासकर ईशान मलिंगा और नीतीश रेड्डी ने आखिरी ओवरों में बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और उसका परिणाम आपके सामने है।
जी, और बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट पर भी। डरबन में महिला क्रिकेट के दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। भारत के 148 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 17 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे है। ये जो सीरीज चल रही है आगामी विश्व कप के मद्देनजर भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत अपना कॉम्बिनेशन भी देखना चाह रहे, लेकिन पिछला मुकाबला हो या आज का मुकाबला, भारत के मद्देनजर उतना अच्छा नहीं रहा।
देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें साउथ अफ्रीका हमारे ही पूल में है, तो एक अच्छी तैयारी का अवसर है भारत के पास। अब देखिए, रैंकिंग में आप उनसे ऊपर हैं, अब रैंकिंग यहां कोई बिल्कुल मायने नहीं रखती, अपनी कंडीशंस का वो लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। हमारे जो मध्यक्रम है वो चल नहीं पा रहा, कोलैप्स हो रहा है। अब अकेला जिम्मा शेफाली वर्मा ही उठाती रहे वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वायन, उनके सामने जिस तरह स्मृति जेमिमा, अनुष्का शर्मा जो डेब्यूटेंट है, पहली बार खेल रही हैं, उन्होंने हथियार डाल दिए अपने, मैं कहूंगा उसका दबाव बाकी खिलाड़ियों पर भी देखने को मिला, इसलिए वो उतने रन बन नहीं पाए जितने की अपेक्षित थे।
जी, और उम्मीद करें कि भारतीय टीम आगामी जो 3 मुकाबला बाकी है उसमें वापसी करे और विश्व कप के मद्देनजर अपने कॉम्बिनेशन को भी सुदृढ़ कर सके। वहीं अजीत अगरकर सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। बीसीसीआई ने 2027 एक दिवसीय विश्व कप के मद्देनजर उन्हें एक और साल का अनुबंध देने का फैसला किया है। उनके टेन्योर में भारत ने 4 आईसीसी टूर्नामेंट जो है उसके फाइनल तक भारतीय टीम पहुंची और जिनमें से 3 जीती भी है, तो एक अच्छा कार्य रहा है उनका। उसी के मद्देनजर उन्हें ये मौका टेन्योर को बढ़ाया गया।
जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के 2 पड़ाव जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना
जी,
और उसके अलावा जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था जिसमें हम फाइनल में पहुंचे
जी,
अब क्योंकि अगला वर्ल्ड कप जो है अगले साल होना है तो उनका टेन्योर बढ़ाया जाना बनता भी है मैं समझता हूं, क्योंकि जो कमी रह गई थी पिछली बार अब उसको हमें पूरा करना है। क्योंकि मैं उस जीत को या उस फाइनल में जो हार है उसको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो एक ऐसी हार थी, एक ऐसे कड़वे मतलब एक ऐसे जख्म थे भारतीय टीम के। भारतीय टीम 1983 का वर्ल्ड कप उठा लीजिए, 2011 का उठा लीजिए, चैंपियन वाला अंदाज भारत का 2023 में ही देखने को मिला था, एक सिवाय एक फाइनल मैच को छोड़ दें, क्योंकि तब तक हम अकेली ऐसी टीम थी जो लगातार
डोमिनेट करके वन साइडेड जीत रही थी,
अपराजित थी टीम, और चैंपियन वाले अंदाज में अंदाज भारतीय टीम का देखने को मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा साइन है ये, क्योंकि इन्होंने जो प्रयोग किए हैं अपने समय में वो बड़े काबिले तारीफ है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने ईशान किशन का बताया T20 वर्ल्ड कप में, वो एक प्रयोग था। शुभमन गिल को जो है T20 वर्ल्ड कप से हटाना और बाकी फॉरवर्ड में कप्तानी सौंपना वो अच्छा प्रयोग रहा। संजू पर भरोसा दिखाना वो उनका प्रयोग था। पांड्या की जगह पर सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपना, तो जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो कोच और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर रही है, सबसे अच्छा साइन यही रहा है
जी। बात कर लेते हैं फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और मोहन बगान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मोहन बगान ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अंक तालिका में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 12वें और मोहन बगान दूसरे स्थान पर है। मुंबई 18 अंक के साथ शीर्ष पर रही है। वहीं कल हुए मुकाबले में केरला ब्लास्टर्स ने जमशेदपुर FC को 2-0 से हराया। बात कर लेते हैं स्क्वैश पर। भारत के सूरज कुमार चंद ने HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर के पुरुष फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में आज सूरज ने हांगकांग के वाइलोक टोको को 11-8, 11-7, 11-6 से हराया। विश्व रैंकिंग में 134वें स्थान पर मौजूद चंद का मुकाबला दक्षिण कोरिया के 8वें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जियोंग मिन रियू से होगा। एक अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने सूरज ने।
जी हाँ बिल्कुल, और अब तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो खिताब जीतने जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला जिस खिलाड़ी से होना है जियोंग मिन रियू साउथ कोरिया के, उनकी रैंकिंग देखेंगे 215वीं PSA रैंकिंग है उनकी, जबकि सूरज कुमार चंद की जो आपने बताया 134वीं रैंकिंग है। जमीन आसमान का अंतर है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुंबई के हैं, छोटे कद के बड़े खिलाड़ी हैं और कोच लक्ष्मण जोशी की अगुवाई में इन्होंने अपने खेल को बिल्कुल मैं कहूंगा फर्श से अर्श तक पहुंचाया है
जी। और वहीं श्रोताओं आपको बता दें कि सूरज ने PSA टूर पर 5वीं बार फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं जियोंग मिन ने सेमीफाइनल मुकाबले में हांगकांग के एडेंस लिंग को हराया। भारत के सेल्वा प्रभु ने एथलेटिक्स सीजन में पुरुषों का ट्रिपल जंप खिताब जीत लिया है। सेल्वा ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 16.61 मीटर की विजयी छलांग लगाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के दौरान सेल्वा ने 16.57 मीटर और 16.37 मीटर की छलांग भी लगाई। अपलोस एडवर्ड्स दूसरे जबकि झावोर बेनेट तीसरे स्थान पर रहे। एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा, खिताबी मुकाबला जीत करके अपना एक रिज्यूमे स्ट्रांग किया उन्होंने।
जी हाँ बिल्कुल, सेल्वा प्रभु जो है लगातार तीसरी जीत है इस सीजन की उनकी, और सबसे इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने परफॉर्मेंस में लगातार सुधार किए। अब देखिए ना 16.37, 16.57 और अब 16.61 ट्रिपल जंप में आप लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। अब मुझे तो उस बात का बहुत इंतजार रहेगा बहुत ही बेसब्री के साथ, जब ये अपना पर्सनल बेस्ट को पार करेंगे, क्योंकि इनका पर्सनल बेस्ट बहुत अच्छा है 17.05, उसको अगर ये पार करेंगे तो बिल्कुल भारतीय टीम की भी बल्ले बल्ले होगी और अपने परफॉर्मेंस को भी ये सुधारेंगे। और 2022 में जो उन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में जो सिल्वर मेडल हासिल करके कामयाबी हासिल की थी उसमें ये एक नया मुकाम हासिल जरूर करेंगे।
और श्रोता आपको बता दें कि सेल्वा प्रभु ने पालो ऑल्टो में आयोजित स्टैनफोर्ड इन्विटेशनल में भी 15.76 मीटर की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आज आगामी एशियाई प्रतियोगिता के लिए चयन मानदंडों की घोषणा की है। हांगकांग में एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 28 से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। इच्छुक खिलाड़ियों को 24 से 26 अप्रैल तक कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित 3 दिवसीय आयु वर्ग प्रतियोगिता के दौरान AFI द्वारा निर्धारित मानक हासिल करने होंगे। देश के शीर्ष एथलीटों के तुमकुर में होने वाली 3 दिवसीय 24वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद एक अच्छा मौका है खिलाड़ियों के पास इसमें पार्टिसिपेट करने का।
जी बिल्कुल, जूनियर लेवल पर यदि खिलाड़ी इस तरह का प्रदर्शन करेंगे तो वो उनके सीनियर लेवल पे बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन होता है बहुत जबरदस्त, और ये कंपटीशन जो है भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए एक टॉनिक से कम नहीं होगा।
और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि पंजाब ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मनोज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।